जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 24 पर भक्तों की संगति का लाभ इस विषय पर 11 जनवरी 2016 को इस्कॉन पुणे में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त अनेक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमेशा नहीं पूछ सकते, तो अगर आप लोगों के प्रश्न हैं, वैसे तो मैं सुबह से कईयों को मिल चुका हूँ, आप पूछ सकते हो। तो ये छोटा प्रोग्राम होगा भागवतम के। श्रीमद् भागवत में हर प्रश्न का उत्तर है और हर विषय पर हमें शिक्षा मिलती है। कल शाम को हमने चर्चा की थी भागवतम के 7वें स्कंद के श्लोक पर, जहाँ की युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा, क्या पूछा किसको याद है, कि किस प्रकार जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, घर में रहते हैं, किस प्रकार शास्त्र के आधार पर उनका आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है, आपको याद है? और उत्तर में नारद मुनि ने क्या कहा, किसको याद है? किसी को नहीं याद। हाँ, क्या कहा? सब भूल गए। साधु संग में रहो, संतों द्वारा भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करो और कार्य करो किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए, निष्काम भाव से। और ये उपदेश था पूरे मानव समाज के लिए और खास करके पूना के भक्तों के लिए, तो आप सबको इसका पालन जरूर करना चाहिए। और सुबह का विषय क्या था, अपराधों से कैसे बचना। तो आज हम आपको प्रीतु महाराज का उपदेश पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें प्रीतु महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं कि जो भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये श्लोक से उनके लिए है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भक्ति में पीछे हटना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। तो इस सभा में कोई ऐसा सज्जन है जो भक्ति में पीछे हटना चाहता है? सब आगे बढ़ना चाहते हो? सब क्यों आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज मामेकम, हम तो हम सर्व पापे में मोक्ष में, तो भगवान हम सबको आदेश दे रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। तो जब भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, तो उसका अर्थ क्या है? उसका ये अर्थ नहीं आप क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, ये छोड़ दो और हिंदू बन जाओ। इसका ये अर्थ है कि आप तन मन धन से भगवान के समर्पण हो जाओ। जैसे कि एक महान संत भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, हे भगवान, मेरी संपत्ति, मकान, पत्नी, बच्चे सब आपकी सेवा में हैं। वो भाव मन से दिया गया और किशोर मिला, और फिलहाल तू ये पदे नंद किशोर। ये यह है भाव। तो आज के श्लोक में हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे। अच्छा पढ़िए।
भक्त वास्तव में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक है, उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु तितिक्षवा कारुणिक कहा गया है। भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को यह सह नहीं होता है। सारा संसार हिंसा से पूर्ण है, अतः भक्त का पहला कार्य है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध सम्मिलित है। भक्त न केवल मानव समाज का अपितु समस्त जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के संतानों के रूप में दिखता है। वह केवल अपने को ईश्वर का पुत्र बताकर तथा अन्यों को यह समझ कर कि उन्हें आत्मा नहीं है, मारे जाना नहीं देता।
okay.
भगवान का भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषक नहीं होता।
हरे कृष्णा। यहाँ पृथु महाराज अपनी प्रजा को शिक्षा दे रहे। आप जाते हो पृथु महाराज कौन थे? राजा। तो वैसे गहराई से देखा जाए तो भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। अवतार का अर्थ है जो वैकुंठ धाम से प्रकट होता है भगवान की शिक्षा का पालन के लिए। और अवतारों के कई विभाग हैं, जैसे गुण अवतार, मन्वंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, युगावतार, तो अलग अलग पुरुष अवतार। और तो पितु महाराज भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। और पितु महाराज ने भी कुमारराज का स्वागत किया, उनसे निवेदन किया कि आप हमें शिक्षा दीजिए। तो पितु महाराज का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ कुमारराज जानते हैं कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। वो उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? सबसे पहले तो कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आपको याद है, तो ये यहाँ उपदेश उनके लिए दिया जा रहा है जो उन्नति करना चाहते हैं। और आप सब ने हाथ उठाया था कि आप सब उन्नति करना चाहते हो, है ना? तो आपको अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, कुछ करना पड़ेगा या नहीं? भगवान कहते हैं माँ सुचा, हाँ घबराओ मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। पर कब? जब तुम सबको त्याग कर मेरी शरण में होगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, बीमा खरीदते हो, तो प्रीमियम भरोगे तो इसका लाभ मिलेगा। अगर आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो लाभ मिलेगा? इसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा भगवान हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं उनके शरणागत होने के लिए। संतों के द्वारा, संत कैसे कहते हैं, साधु कैसे कहते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान की शिक्षा दे रहा है, वो है असली साधु। साधु भी क्या उपदेश देता है कि परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आर यू गॉड? प्रभुपाद जी ने उत्तर में कहा, एनीवन हू सेज इज गॉड GOD इज एक्चुअली DOG। व्हाट इज DOG? जो व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूँ वो भगवान नहीं है, पर पशु है। तो ये है असली संत की पहचान। वो हमेशा परम भगवान की शिक्षा की स्थापना करता है। जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, प्रवचनों को पढ़ो, पत्रों को पढ़ो, सब में क्या है, कृष्णातीत भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के शरणागत हो। गुरु केवल एक माध्यम बनता है, पर शरणागत होना है भगवान श्री कृष्ण के। तो यहाँ कुमारराज कह रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो पहला नियम क्या है, हिंसा, किसी योनि को कष्ट नहीं पहुँचाना। आज सुबह हम जद भारत की कथा आपको सुना रहे थे, जद भारत की कथा में आप पढ़ते हो कि किस प्रकार जद भारत इतने ध्यानपूर्वक चल रहे थे कि चींटी पर भी पैर नहीं रखते थे। यह है भक्त का भाव। आजकल आप देखते हो कि धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं पर अत्याचार किया जाता है कि नहीं, हिंदुओं में भी, ये नहीं कि केवल मुसलमान में, तो ये बड़े दुख की बात है। तो जो भक्त है वो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि ये सब भगवान की संतान है, और क्योंकि भगवान की संतान है सबको जीने का अधिकार है। तो ये है पहला भाव कि भक्त को बिल्कुल अहिंसा का भाव रखना चाहिए। सबने बुद्धा जी का नाम सुना है, गौतम बुद्धा, और गौतम बुद्धा ने की जिस शिक्षा का प्रचार किया उसका क्या है नाम, बुद्धिज्म। तो आजकल विदेशों में खास करके हॉलीवुड में बुद्धिज्म एक फैशन बन गया है, क्योंकि लोगों को अमेरिका में हमेशा कोई नई चीज चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी से अभ्यास हो गया, इससे हो गया, तो कई लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। पर अगर और बुद्धा जी उनका सिद्धांत है बिल्कुल अहिंसा। जो आजकल के बुद्धिस्ट हैं वो सब कुछ खाते हैं। आप बर्मा में जाओ, चाइना में जाओ, जापान में जाओ, सब बुद्धिस्ट हैं, देश भी बुद्धिस्ट है, पर खाने की खुराक पशु है। ये बुद्धिस्ट नहीं है, असली बुद्धा जी की शिक्षा थी अहिंसा। कई बार प्रभुपाद जी भी जब क्रिश्चियन लीडर्स को मिलते थे तो प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे, जब जीसस क्राइस्ट ने कहा है दाउ शल नॉट किल, तो आप पशुओं को क्यों खा रहे हो। कोई 25 साल पहले मैं केरला में था, और वहाँ भारत के जो ईसाई चर्च के चीफ थे उनसे वार्तालाप हो रहा था। तो पहले तो धर्म के विषय में चर्चा की कि धर्म की आवश्यकता है, वो भी मान गए। फिर तो थोड़ी देर आगे जाके हमने कहा, वो जब भाई जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स में कहा है थाउ शैल नॉट किल, तो आप लोग पशुओं को क्यों खाते हो। तो उसने कहा कि पशुओं के पास सोचने की शक्ति नहीं है, दे हैव नो रैशनल पावर, अंग्रेजी में कहा। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो सोचने की शक्ति नहीं है, अगर एक छोटी चींटी को भी आप सामने चीनी फेंको, सारी चींटियाँ आपकी तरफ चीनी की तरफ जाएंगी, और जब आपकी उंगलियों को देखेंगे तो उन्हें पता लग जाता है खतरा है, भाग जाएंगे। तो जब एक छोटी चींटी में इतनी गहरी शक्ति है सोचने की, तो आप कैसे कह सकते हो नहीं है। अंत में कहने लगे मैं तैयार नहीं था ये डिस्कशन के लिए, फिर हमने किसी और विषय की चर्चा की। तो कहने का तात्पर्य यह है जो धर्म के नियमों का पालन करें उन्हें अहिंसा का पालन भी करना चाहिए। और यहाँ कुमारराज कह रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की जिसकी इच्छा है उसे बिल्कुल अहिंसा का भाव रखना चाहिए। आगे क्या, जो हमारे महान आचार्य हैं उनकी शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। रूपा गोस्वामी जी ने हमें कई ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत। रूपा गोस्वामी जैसे आप जानते हो एक समय समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था उनका, उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे उनके राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी तो एक उनकी नाव सोने के सिक्कों से पूरी भर गई थी। अंदाजा लगाओ कितनी संपत्ति होगी। पर उन्होंने ये संपत्ति बांटी 50% ब्राह्मणों को, 25% रिश्तेदारों को, और बाकी उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। रूप गोस्वामी जी ने हमें कई ग्रंथ दिए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे कई भी अकूति, कभी हमारे हेरा बहुत से युगल पीढ़ी थी। कब वो शिव अवसर आएगा जब मुझे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन का मौका मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने खास करके रूप गोस्वामी जी के दो ग्रंथों का अनुवाद किया है। कौन से ये दो ग्रंथ? हाँ हाँ, भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु थी, लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। मैं 1970 में लॉस एंजलिस में था प्रभुपाद के साथ, जब ये बुक छप के आई थी जापान से। उन दिन में वहीं किताबें जापान में छपती थी और पूरा मंदिर भरा हुआ था भक्तों के साथ। प्रभुपाद जी ने किताब को उठाकर कहा, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरी डिवोटी शुड रीड दिस बुक। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति की विधियों की चर्चा की जाती है। आगे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, केवल 11 श्लोक है पर हर श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी ने हर श्लोक के साथ 3-4-5 पेज का तात्पर्य दिया है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्र कर्म प्रवर्तना। तो शिक्षा होनी चाहिए शास्त्रों, शास्त्र और साधु के आधार पर। यहाँ कह रहे हैं कि हमें महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता या तो रूप हमें दी है, पर प्रभुपाद जी जब भगवद गीता का अनुवाद कर रहे थे तो उनके सामने कौन सा ग्रंथ था भगवद गीता का अनुवाद, जो कि वालादेव बिश्वभूषण ने किया था, उस पर निर्भर है। प्रभुपाद जी ने हमें जो श्रीमद् भगवत के तात्पर्य दिए हैं, ये भगवत के तात्पर्य निर्भर हैं महानाचार्यों के तात्पर्य के ऊपर। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत जी इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने हमें वही शिक्षा दी जो कि गुरु परंपरा में आ रहा है पिछले 5,000 सालों से। तो यहाँ ये एक उपदेश दे रहा है, दिया जा रहा है कि हमें महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। ये नहीं हम सोचे ये तो आधुनिक युग है, हमें सब कुछ बदल देना चाहिए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए और प्रभुपाद जी का संघर्ष चल रहा था तो कई स्वामियों ने कहा, स्वामी जी आप तो नए आए हो अमेरिका में, हम पुराने हैं, आप ये जो शिक्षा दे रहे हो 4 नियम ये मत दीजिए, कोई पालन नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी ने बदला नहीं। हालांकि 1 साल के लिए प्रभुपाद जी का बड़ा गहरा संघर्ष था। एक समय प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में एक लॉफ्ट में रह रहे थे। लॉफ्ट होता है एक प्रकार का गोडाउन, क्योंकि प्रभुपाद जी के बाद कोई रहने का ठिकाना नहीं था। और वो लॉफ्ट का मालिक था एक ड्रग एडिक्ट जो हमेशा भंग लेता था, पर प्रभुपाद जी के पास और कोई उपाय नहीं था। तो प्रभुपाद जी वो ड्रग एडिक्ट एक दिन रात के 1 बजे प्रभुपाद को मारने के लिए आया। तो प्रभुपाद जी को रात के 1 बजे न्यूयॉर्क के शहर में, अंदाजा लगाओ न्यूयॉर्क शहर में 7 बजे के बाद लोग घूमते नहीं हैं, प्रभुपाद जी को 1 बजे रात के सड़क में आना पड़ा। तो प्रभुपाद इतनी कठिन स्थितियों में थे, जब भी उन्होंने भगवान के संदेश को बिल्कुल नहीं बदला, उन्होंने यथारूप ही दिया। तो ये है इस श्लोक का आदेश कि हमें महान आचार्यों के शिक्षा कर्म के आधार पर चलना चाहिए। आगे हमें भगवान के लीलाओं का अमृत का स्मरण करना चाहिए। मन मना बाबा महत भक्त हो माध्याजी माम माम में वाशी सत्यम दे प्रति जने पीयूष में। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, और अगर तुम ये सब करोगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ भगवान क्या क्या लाभ मिलेगा, मेरे धाम आओगे बिना शंका के। हम ऐसे कितने भक्त हो जो भगवान के धाम जाना चाहते हो, सब ये लो। और कितने भक्त हो जो अमेरिका जाना चाहते हो, बस एक ही दो। क्योंकि आज के लोग सोचते अमेरिका स्वर्ग के समान है, तो सब तरसते हैं अमेरिका जाने के लिए। पर वहाँ भी वही क्लेश है जो भारत में है, और अब चाहे विश्व के किसी कोने में चले जाओ, आप सात प्रकार के क्लेशों से बच सकते हो, नहीं बच सकते। वो हमें रुचि लेनी चाहिए भगवान की लीलाओं में, भगवान के चिंतन में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। और भगवान की लीलाओं की कमी है क्या, कोई कमी नहीं है। कल हमें संक्षेप में महाप्रभु जी की दो लीलाओं का वर्णन किया, जिनका वर्णन लोचनदास ठाकुर ने किया है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और जिसे हम कृष्ण कथा कहते हैं, कृष्ण पजल्पा से बचो और कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाओ। जैसे हम सुबह कह रहे थे, जीवा गोस्वामी कहते हैं, अगर आप प्रजापा सुन रहे हो तो इसमें आपका भी दोष है। अगर कोई प्रजापा कर रहा है, वैष्णव निंदा कर रहा है, तो हमें उस स्थिति से हट जाना चाहिए। हमें कहना चाहिए हम इसके योग्य नहीं हैं, अगर नहीं भागो तो आप भी दोषी बन जाते हो। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है जिनका नाम था खोला भजन श्रीधार। खोला भजन श्रीधार छोटे से व्यापारी थे, आप जैसे बड़े सेठ नहीं थे। क्या था उनका धंधा, हाँ, केले के प्याले बनाना और केले बेचना, और छोटी सी आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की सेवा में। और एक और गुण में ये था कि 24 घंटे हरि नाम का उच्चारण करते थे। उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे, क्योंकि रात को पड़ोसी सोते थे और कला जैसे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो पड़ोसी कहते थे लगता है इसे भूत सता रहे हैं, ये व्यक्ति खुद भी नहीं सोता, हमें भी सोने नहीं देता। और महाप्रभु का इस खोला वजह श्रीधार से खास संबंध था। रोज आते थे उनकी दुकान में। महाप्रभु ने छोटी आयु में ही संस्कृत का पाठशाला खोला था। उनका नाम था निमाई पंडित। पंडित जैसे आप जानते हो उसका अर्थ है ज्ञानी, और जिसका चरित्र भी हो। तो दिमाग रोज उनकी दुकान में आते थे, उनसे सौदा करते थे, क्या है केले का भाव, तो कहते थे 2 पैसा दर्जन। कहते थे ये तो बहुत महंगा है, तुम बहुत नफा कमा रहे हो, आधा भाव होना चाहिए। तो खोला वजह सीधा कहते थे तुम दूसरी दुकान में जाकर क्यों नहीं खरीदते, मेरा सिर क्यों खाते हो रोज। उन्हें वहीं कहते थे नहीं, तुम अच्छे सप्लायर हो, तुम्हें मैं क्यों छोड़ू। तो खोले वजह श्रीधार निमाई कहते थे तुम बड़े धनी हो, और खोले वजह श्रीधार कहते थे अगर मैं धनी हूं तो आके देख लो मेरे घर में कितना धन है। वो रहते थे एक कमरे में, और उस कमरे में कोई छत भी नहीं थी। जब बारिश आती थी तो खुदा वजह श्रीधर दीवार के साथ जुड़ जाते थे। ये था उनका भाव। और पहनने के लिए उनके पास एक ही धोती थी जिसमें भी अनेक छेक थे। पर दिन रात वही नाम करते थे। उनके घर में क्या था, एक ही बर्तन, एक ही लोटा जो इतना टूटा हुआ था कि चैतन्य भागवत में कहा गया है कोई चोर भी उसे नहीं छुएगा। तो वो एक ही लोटे से पानी पीते थे, खाना खाते थे इत्यादि। तो महाप्रभु ने कहा एक दिन मैं सारे भिक्षुओं को बताऊंगा तुम कितने धनी हो। महाप्रभु ने कैसे बताया, महाप्रभु गए थे 1,00,000 भक्तों के साथ चंदकाजी के महल में। और जो वो चंदकाजी के महल में गए, क्यों गए चंदकाजी के महल में, क्योंकि चंदकाजी ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था। तो कितने महाप्रभु ने लगभग 8 घंटे लगातार कीर्तन किया, जिसके पश्चात उन्हें प्यास लगी। तो प्यास लगी तो कहाँ गए, खुला वजह श्रीधर के घर, उनके झूठे टूटे हुए कप से, लोटे से पानी पीने लगे। खुला वजह श्रीधर ने कहा हे भगवान आप क्या कर रहे हो, ये मेरा झूठा बर्तन है, इसमें आप पानी कैसे पी रहे हो। महाप्रभु ने क्या कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं इस प्याले से पानी पीकर। भक्त भगवान की सेवा करता है, भक्त भगवान को, भगवान भक्त का गुणगान करते हैं। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, सनातन गोस्वामी छुप छुप कर आ रहे थे महाप्रभु को मिलने, उनका पूरा शरीर पस इत्यादि से भर गया था, पूरा शरीर गंदा था। महाप्रभु ने उसे उन्हें गले लगाया। खुश नाता ने कहा क्या कर रहे हो, मेरा शरीर पस से भरा हुआ है आप गले लगा रहे हो। महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। तो खुले में सीधा से चैतन्य महाप्रभु का बड़ा गहरा संबंध था, और संन्यास लेने से पहले भी उन्हें दर्शन दिया था। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। यहाँ कहा जा रहा है भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण करो। आगे भक्ति की जो विधियां हैं उनका पालन करो। कई बार हमें सुनने में आता है तुम्हारे इस्कॉन में तो बहुत से नियम हैं, बहुत से बंधन हैं। लोग कहते हैं ये करो ये करो ये करो, हमारे गुरु इतने दयालु हैं, पूरी छूट दी हुई है हमें, जो करना है करो। दीक्षा भी दे देते हैं, ब्राह्मण का जनेऊ भी दे देते हैं, एक गोड़िया प्रचारक हैं जो उत्तर भारत में प्रचार कर रहे हैं। एक माला पहली बार आप उनके जाओ सत्संग में, वो दीक्षा दे देते हैं एक माला में। तो परिस्कार में इतने नियम है, ये नहीं करो ये नहीं करो। तो ये बंधन किस लिए, ये नियम किस लिए है, ये नियम है हमारी भलाई के लिए। जितने आप नियमों का पालन करोगे, भक्ति विधियों का पालन करोगे, उतनी तेजी के साथ 6 दर्पण मार्जन प्राप्त होगा। और जितने देर हंसते करोगे उतनी देर से हृदय साफ होगा। जैसे कि इलाज कराने के लिए दवाई और नुस्खा दोनों की आवश्यकता है। तो यह कहा जा रहा है भक्ति की नियमों का पालन करो, और इनका पालन करो निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। भगवान ऐसे तो भगवान कहते हैं गीता में 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, छात्र विदा बजानते माम, कौन सी चार परिस्थितियां? और जिसे धन चाहिए, पर आप पूरा वालों को धन तो नहीं चाहिए सर, ये धन तो मिथ्या है ना, धन नहीं छूना चाहिए कि छूना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, धन को छुओ पर भगवान की सेवा करें। ओके, जैसे धन चाहिए, दुखी रोगी पीड़ित ज्ञानी, भगवान कहते हैं चार के चार पुण्यात्मा हैं, पर इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है जो कि ज्ञान के आधार पर मेरे शरण में आता है। तो वैसे तो आप किसी भावना से भी कर्ज हो सकते हो, पर जो ज्ञान के आधार पर उन्होंने शास्त्र में पढ़ा है, हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, हम हो रहे हैं। अनेक व्यक्ति भक्तों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो ग्रंथों के पढ़ने से प्रभावित हो जाते हैं, हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो ये है असली निर्णय, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए निष्काम भाव से। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली, जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो सदा शांत रहते हैं। आगे क्या है, हमें दूसरों का दूसरों की निंदा नहीं करनी, ब्लास्फेमी हिंदी वर्ड फॉर ब्लास्फेमी, लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि हम इस विषय पर हमने सुबह चर्चा की थी तो अभी नहीं करेंगे, हमें लोगों की निंदा आलोचना से बचना चाहिए। आगे क्या है, हमें सादा जीवन में बिताना चाहिए। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे सिंपल लिविंग सादा जीवन ऊंचा विचार। सादा जीवन का क्या अर्थ, कैसा अर्थ है, हम पेड़ों के नीचे रहे, जैसे वृंदावन में जो छह गोस्वामी थे वो कहाँ रहते थे, आश्रम में, होटल में, धर्मशाला में, तो कहाँ रहते थे, पेड़ों के नीचे। तभी आपको कहे पेड़ों के नीचे रहो, एक असल में आज तो पेड़ है ही नहीं, वृंदावन तो वनों से भरा हुआ था और आज क्या स्थिति है, बिल्डिंगों से भर गया है। वन आपको देखते हैं वृंदावन में अभी, अरे पेड़ काटे, क्योंकि इतने पेड़ काटे हैं इसका असर हो रहा है पोल्यूशन पर। जब आप इतने पेड़ काटो तो प्रकृति भी साथ नहीं देती, इसका परिणाम क्या होता है, वर्षा नहीं आती। तो सादा जीवन ऊंचा विचार, ऊंचा विचार का अर्थ है सदा ये सोचो कि हम भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं। और भौतिक जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, ऊंचा जीवन सादा विचार। चोरी करो, चापलूसी करो, धोखा दो, पर ऊंचा जीवन चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बना देगा, आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है ना, एक नहीं चार पांच, एक से कर्जा लेते हैं, दूसरे कार्ड से कर्जा चुकाते हैं, तीसरे कार्ड से कर्जा लेते हैं, चौथे कार्ड से चढ़ कर जा चुका थे, खास करके विदेशों में। तो भक्त का भाव होना चाहिए सादा जीवन ऊंचा विचार। ऊंचा विचार का अर्थ है ये भाव रखना कि हमने भगवान के शरणागत होना है, और अगर ये सादा जीवन ऊंचा विचार भाव रखोगे तो आप बिना चिंता के सरलता से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हो। क्यों, आपका आवश्यकताएं बहुत कम होगी, आप बाकी समय दे सकते हो भगवान की सेवा में। तो यह कहा जा रहा है भक्त को सादा जीवन बचाना चाहिए और उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए, अत्यंत सहनशील। विनाद भी सुनी चाहिए ना, तरोड़ भी सुना। ठाकुर भक्ति रोजी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और एक रूप से देखा जाए वो है असली संस्थापक आचार्य। प्रभुपाद के शब्दों में प्रभुपाद ने एक दिन कहा, वे एक्चुअली ठाकुर भक्ति रॉय द फाउंडर ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, क्योंकि ठाकुर भक्ति जी महान आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की शुद्ध शिक्षाओं की स्थापना की। तो उन्होंने अनेक ग्रंथ दिए हैं जिनमें एक प्रार्थना थी उनकी जिसका नाम है शरणागति। शरणागति का क्या अर्थ है? तो इस प्रार्थना में ठाकुर भक्तियों जी हमें उपदेश देते हैं कैसे आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। आप सुनना चाहते हो? ईश्वर इंग्लिश में है, पढ़ो इंग्लिश में, समझते हो इंग्लिश? यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व योर माइंड इन अटेंटिव चैंटिंग कृष्णास ग्लोरीज। ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं अपने मन में सदा भगवान की महिमा का चिंतन करो और अपने मन में सदा कृष्णा की महिमा का स्मरण करो। कृष्णा का कीर्तन करोगे तो इसके द्वारा मन को वश में ला सकोगे। अगर मैं आप सबसे पूछूं मन के द्वारा कोई कष्ट है क्या आपको, क्या कहोगे? हाँ ना, अर्जुन ने क्या कहा? चंचला ही माना कृष्णा। ये मन तो आयु से भी ज्यादा, मन को वश में लाना आयु से लाने से भी कठिन है। तो कई बार लोग पूछते हैं मन को स्थिर कैसे बनाया जाए, तो ठाकुर भक्तियों जी क्या उपदेश दे रहे हैं? कह रहे हैं कि आप कृष्णा का कीर्तन करोगे तो इसके द्वारा मन को बड़ी सरलता से वश में ला सकोगे। क्या है उपाय? कृष्ण के, जैसे हम सुबह कह रहे थे अगर आप अपराधों से भी बचना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हरि नाम का ध्यानपूर्वक उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन और साधु संगत। अगर इस साधु संगत में रहोगे, खास करके अगर अच्छे भक्तों की संगत में रहोगे, फिर आप अपने आप को अपराधों से भी बचा सकोगे। तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कृष्णा का कीर्तन करोगे तो इसके द्वारा मन क्या होगा? चंचल मन स्थिर हो जाएगा। देखो उपाय है आपकी समस्या का, उपाय का लाभ उठाओगे। आगे कहते हैं झूठे अहंकार को त्यागो, गिव अप फॉल्स प्राइड। हम सब आपको समझा रहे थे कि इस प्रकार अहंकार और आलसीपन के कारण हम अनेक अनर्थ के प्रभाव में आते हैं। तो ये जो अहंकार मतलब है फॉल्स प्राइड, अहंकार, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, हमारे आदेश से चलोगे तो शांति रहेगी, नहीं तो अशांति हो जाएगी। तो ये अहंकार को तोड़ना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा तिनादपि सुरिचेना। तो अगर आप सब भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो ये विनम्रता का भाव, सब वैष्णव के प्रति आदर, ये भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। वो कहते हैं अहंकार को तोड़ो, अपने आप को हमेशा सोचो कि तुम बिल्कुल बेकार के निकम्मे हो, तुम सबसे पतित हो। कृष्णदास काविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृत दिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि है मैं तो इतना पतित हूँ कि मेरा नाम भी मत लो, नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। और हमारी क्या स्थिति है? नाम नहीं लो तो दुश्मन बन गए, है ना? किसका नाम छूट जाए तो हम कहते ये तो हमारा दुश्मन है। हम तो चाहते हैं सभी हमारा नाम लें, है ना? जब ये पॉलिटिशियन लोग लेक्चर देते हैं, लोगों को ट्रकों में भर के लाते हैं जाए कहने के लिए, है ना? ठाकुर कह रहे हैं अहंकार को तोड़ो, अपने आप को बड़ा पतित, घास से भी ज़्यादा पतित समझो। घास देखो कितना पतित है, आप सब घास के ऊपर चलते हो ना, घास आपके पाँव को काटता है कभी? कभी कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे सिर पर क्यों चले? वो सह लेता है। उसी प्रकार जब आप भक्ति में जुड़ते हो, अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं, आदर अपमान, एक दिन आदर अगले दिन अपमान, पर हमें सह लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ऐसे क्यों हुआ। और सब जीवात्मा को आदर दो, अरे पूरे जीवन में किसी को कष्ट मत दो, अपना सुख का मत सोचो, ये सोचो कि दूसरे की क्या इच्छा है। तो युव ठाकुर कह रहे हैं कभी भी किसको कष्ट नहीं दो, सबको संतुष्ट रखो और अपनी खुशी के लिए अपनी खुशी का भूल जाओ। दूसरों की खुशी, ये हमारे बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, वहाँ तो अपनी खुशी का मत सोचो, पर दूसरे की खुशी का सोचो। ये है भक्ति विनोद ठाकुर का संक्षेप में भाव। तो हम जब इन महान आचार्यों के विषय में सुनते हैं, महान आचार्यों का उपदेश पढ़ते हैं, जब हम प्रभुपाद जी का उपदेश पढ़ते हैं, तो फिर हमारे मन में ये भावना बढ़ती है, हमें भी इसका पालन करना चाहिए, है कि नहीं। और जब हम इनका, और हम अगर प्रयास करें पालन करने के लिए, तो चाहे कितनी भी कमी हो, भगवान उसे दूर कर देते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, जो प्रयास करते मेरे शरणागत होने के लिए, उनमें अगर कुछ कमी भी है तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे अब एक कदम लोगे भगवान के प्रति, वो 10 कदम लेंगे आपके प्रति। तो आप सबसे निवेदन है, ये जो शिक्षा आपने सुनी है इसका पालन करो। ठाकुर बखरीनाथ जी ने जो शिक्षा दी है इसका पालन करो, और पालन करोगे तो क्या परिणाम होगा, आप भक्ति के मार्ग में उन्नति कर सकोगे। तो इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।
इन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।
आपका कोई प्रश्न है किसी का? मुझे कहा गया था कि आप भक्तों के बहुत प्रश्न है।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर उपदेशों के लिए। महाराज आपने कहा कि मिथ्या अहंकार से बचना चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करनी हो तो, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि भक्ति की वजह से भी अहंकार बढ़ता है, और ठाकुर भक्ति विनोद भी इसे एक अनर्थ के रूप में बताते हैं कि भक्ति से उत्पन्न अहंकार। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेवा जब हमें मिलती है तो उस सेवा के चलते भी हमारा अहंकार बढ़ने लगता है, तो ये सेवा करनी भक्ति के लिए पोषक है, लेकिन सेवा से बढ़ा हुआ अहंकार भक्ति को बाधक है, इस दोनों में से मार्ग निकालते हुए आगे कैसे चले?
हम सोचते हैं हम इतने ग्रंथ पाठे, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, भक्ति के साथ विनम्रता का भाव अनुकूल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर भक्ति के कारण हम घमंडित हो जाते हैं, भगवान आपकी भक्ति को ले भी लेंगे, भगवान देते हैं और लेते भी हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर आप सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो विनम्रता का भाव अनुकूल करो। तो हमें अगर हम बकायदा ग्रंथों को पढ़ें, साधु संग में रहें, हरि नाम का जाप करें, तो संभव है कि आप विनम्रता का भाव अनुकूल कर पाओगे। हम पूछे आखिरी प्रश्न। हाँ, चारों धाम है, आप पूना धाम में रहो, क्योंकि प्रभुपाद पूना शहर में आए थे पवित्र, तो जहाँ भगवान का गुणगान हो वो स्थान धाम बन जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में वृंदावन की स्थापना की, जहाँ भगवान का गुणगान हो वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो आप जहाँ भी रहो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का प्रचार करो, वो स्थान धाम बन जाएगा। सब धाम जाएंगे, वहाँ तो जगह भी नहीं होगी आपके लिए, ठीक है? ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज, महाराज आपने उपदेशामृत के में बताया है, श्री रूप गोस्वामी में बताते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। महाराज हम लोग जो आपने रूप गोस्वामी जी के बारे में बताया, उन्होंने हमें बताया उत्साह निश्चय धैर्य, तो महाराज हम लोग डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ाएं अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति?
डिटर्मिनेशन कैसे बनाएं, चंचल मन को कैसे स्थिर बनाएं, अहंकार से कैसे बचें, अनर्थ को दूर कैसे करें, इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। तो आपको ये एक अजीब चीज है, हर बीमारी का एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? ध्यान पूर्वक जाप, शास्त्रों का अध्ययन, साधु संग में सेवा, और इन विधियों का पालन करोगे तो बड़ी सरलता से हर अनर्थ को दूर कर पाओगे। जैसे रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, भजन क्रिया के पालन से अनर्थ निवृत्ति की प्राप्ति होती है। तो ये सब समस्याओं का एक ही उपाय है, वन मेडिसिन टू क्योर ऑल स्पिरिचुअल डिजीजेस। हरि नाम में इतनी शक्ति है। आपका हरि नाम में इतनी शक्ति है? हाँ, इतनी शक्ति है। और आप खुद देख रहे हो, जिन देशों में कभी कृष्ण का नाम भी किसी ने सुना नहीं था, आज हजारों भक्त हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण बन गए हैं। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू किया है मैंने। क्या? मैंने हजारों मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। तो मलेच्छा कहते हैं जिसे, जिसकी बुरी आदतें हो, वो ब्राह्मण कहते हैं जिसमें असली ब्राह्मण के गुण हो। तो मलेच्छे को ब्राह्मण बनाना आसान काम है? नहीं, लगभग असंभव कार्य है। तो प्रभुपाद जी ने हरि नाम के माध्यम से लोग ब्राह्मण बन गए। तो ये हरि नाम ही है असली धन। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हरि नाम को बढ़ाने में। और मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक जब मन में से भटकेगा उसकी चिंता मत करो, जब आप जब करने बैठते हो उसी एक कार्य पर ध्यान रखो। और जितने ध्यान, ये नहीं जब कर रहे हो और टेलीफोन भी रख रहे हो, ये जो सेल फोन है, सबके पास है सेल फोन? ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप इसे जुदा एक मिनट नहीं होना चाहते, ये हम सबका असली प्रेमी बन गया है। तो अब प्लेन में भी जाओ, सब लोग सेल फोन में ही खेल रहे हैं। तो जब आप जॉब करने बैठते हो तो सेल फोन को साइलेंस मोड में डाल दो। ओके,
दंडवत महाराज जी, हरे कृष्णा। जैसे हम
ऐसे क्या,
गुरु का कृपा तो हम छोटे बड़े को सबको होना चाहिए।
गुरु का क्या?
गुरु का कृपा, हाँ। जैसे हम छोटे बड़े को सबको मिलना चाहिए, हाँ। मगर यहाँ ऐसा कैसा भेदभाव है, जैसे जो कंसरल है चाहे कुछ है, वो बोलते हमारे गुरु का ये काम है, हमारे गुरु का ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, छोटे बड़े को सब जैसे एक ही गुरु
का। क्या कहते?
एक ही गुरु का, हम लोग एक गुरु भाई है, ऐसा एक गुरु भाई बहन है, तो हमारे लिए तो गुरु एक ही हैं, एक ही हैं, और उनका कृपा सब लोग के ऊपर आना चाहिए। और हम आपस में भक्तों लोग कैसे ऐसा बिना व्यव करते, इसका कारण क्या है?
इन गुरु महाराज कृपा प्राप्त, असली कृपा गुरु के साथ बैठने में प्राप्त नहीं होती। असली कृपा प्राप्त होती है गुरु की शिक्षा के पालन में। प्रभुपाद अपने गुरु को बहुत कम मिले थे, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा अलग अलग शहरों में रहे थे। तो जो व्यक्ति भी गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, गुरु में श्रद्धा रख रहा है, उसे कृपा ऑटोमेटिकली मिलेगी। जैसे हम नलका खोलते हैं तो पानी आता है। ये नहीं सोचो जो गुरु के पास बैठता है उसे ज़्यादा कृपा मिलती है। अब समझे? तो गुरु कृपा शिक्षा पर आधारित है, कौन पालन कर रहा है, कौन पास में बैठा है उसके द्वारा नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं जो पास बैठता है ज्यादा उसे ज्यादा कृपा मिलती है, ये बिल्कुल गलत भाव है। समझ गए? हरे कृष्णा। अब मुझे जाना है नए मंदिर।
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूना यात्रा की।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.